ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। काठमांडू में बिजली वितरण प्रणाली को भूमिगत करने के कार्य का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया शुभारंभ। आगामी दो वर्षों के अंदर में बिजली पहुंचाने की प्रधानमंत्री ने जताई प्रतिबद्धता। डॉ शिवमाया तुम्बा हाम्पे को कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री में की गई नियुक्ति। आज ही किया पदभार ग्रहण। आज रात 12 बजे से ही लागू होगी नई पेट्रोल डीजल और मिट्टी के तेल के नए मूल्य। प्रति लीटर 2 रूपये घटाने का नेपाल आयल निगम ने किया निर्णय। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम धमाका, 7 लोगों की हुई मौत, 35 से ज्यादा हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने काठमांडू घाटी में बिजली आदि के तारों को भूमिगत करने की प्रक्रिया का आज विधिवत शुभारंभ किया। आज काठमांडू में बिजली वितरण प्रणाली को भूमिगत, सुदृढ़ और स्वचालित करने के कार्य का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि अगले 2 सालों में देश के सभी हिस्सों में बिजली पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी कर नेपाल को बिजली निर्यात देश के नाम से विश्व में पहचान दिलाने का लक्ष्य सरकार का है। मौके पर उन्होंने एमसीसी योजना को ऊर्जा क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि एमसीसी को जल्द ही साकार किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि नए उद्योग स्थापित करने, जिन उद्योगों की पुनर्संचालित करने, युवा पलायन को रोकने और विदेश में रहे प्राविधिकों को स्वदेश में ही रोजगार मुहैया कराने लगायत काम की शुरूआत सरकार कर चुकी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि सरकार डिजिटल नेपाल बनाने के महाअभियान में जुटी है। आज काभ्रे की धुलीखेल नगरपालिका के 34वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि डिजिटल नेपाल के लिए विकास और सेवा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने की नीति अपनाई गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महिला और पिछड़े समुदाय के उत्थान, रोजगारी और युवाओं में विदेश के प्रति विकर्षण लाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम लाए गए हैं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सांसद एवं पूर्व उपसभामुख डॉ शिवमाया तुम्बा हाम्पे को कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री पद के लिए पद तथा गोपनीयता का शपथ ग्रहण कराया। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति भंडारी ने नवनियुक्त मंत्री तुम्बा हाम्पे को पद तथा गोपनीयता का शपथ दिलाया। समारोह में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित अन्य मंत्रियों एवं उच्च पदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति थी। नेपाल आयल निगम ने पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल के मूल्यों को घटाया है। ये मूल्य आज रात के 12 बजे से क्रियान्वयन में आएगी। नए तय की मूल्यों अनुसार पेट्रोल 108 रूपये, डीजल तथा मिट्टी तेल का मूल्य 97 रूपये है। इसकी जानकारी निगम के नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह ने दी। जिला अदालत काठमांडू ने पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा को बलात्कार के प्रयास के मुकदमे में सफाई दी है। न्यायाधीश अंबरराज पौड़ेल की इजलास ने महरा को सफाई देने का फैसला किया है। इसकी जानकारी काठमांडू जिला अदालत के रिश्तेदार आनंद प्रसाद श्रेष्ठ ने दी। प्रतिनिधि सभा की विकास तथा प्रविधि समिति ने काठमांडू तराई मधेश जोड़ने वाले द्रुत मार्ग निर्माण के विषय में परियोजना और संबंध पदाधिकारियों के साथ आज विचार विमर्श किया है। विचार विमर्श में रक्षा मंत्रालय के सचिव रेशमी राज पांडे ने कहा कि नए डीपीआर के मुताबिक 2081 साल आषाढ़ महीने तक द्रुत मार्ग निर्माण का कार्य सम्पन्न करने के हिसाब से काम को आगे बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि उक्त द्रुत मार्ग की चौड़ाई पहाड़ी भूभाग में 25 मीटर और तराई भूभाग में 27 मीटर की होगी। साथ ही 87 पुल बनाए जाएंगे। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक से पहली संविधान सभा के सदस्य सिद्धार्थ कुमार सोमानी और राष्ट्रीय सभा के सदस्य दुर्गा प्रसाद उपाध्याय के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया है। बैठक में राष्ट्रीय सभा की अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा द्वारा प्रस्तुत की गई शोक प्रस्ताव को बैठक ने सर्वसम्मति से पारित किया। बता दें कि 2074 साल में राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस की तरफ से प्रदेश नंबर 5 से राष्ट्रीय सभा सदस्य में निर्वाचित हुए सांसद उपाध्याय का 51 वर्ष की उम्र में इसी फागुन 2 गते इलाज के दौरान निधन हुआ था। इसी तरह 2064 के संविधान सभा सदस्य निर्वाचन में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली से निर्वाचित सोमानी का 52 वर्ष के उम्र में बीते माह 25 गते निधन हुआ था। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे बैठेगी। नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के कार्यालय द्वारा आज सिंहदरबार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर राष्ट्रीय सभा के सदस्य दुर्गा प्रसाद उपाध्याय के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया। श्रद्धांजलि सभा में नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देवा ने स्वर्गीय उपाध्याय के द्वारा पार्टी संगठन में दिए गए योगदान और सक्रियता महत्वपूर्ण है बताया। गौरतलब है कि प्रदेश नंबर 5 से राष्ट्रीय सभा सदस्य बने 50 वर्षीय सांसद उपाध्याय का कैंसर के कारण निधन हुआ। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने आज दारचूला की कालापानी क्षेत्र निरीक्षण किया। उप प्रधानमंत्री पोखरेल सहित प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्ना, सुदूर पश्चिम प्रदेश की उपसभामुख निर्मला जोशी वड़ाल और प्रदेश सभा सदस्यों सहित की टोली ने निरीक्षण किया। मौके पर उप प्रधानमंत्री पोखरेल ने सीमा की संवेदनशीलता के विषय में जानकारी लेने के लिए भ्रमण में जाने की बात बताते हुए कहा कि नेपाल की सीमा सुरक्षा के लिए नए तरीके से औपचारिक रूप में विवादित विषयों का समाधान किया जाएगा और उसके लिए सरकार औपचारिक पत्र भेज चुकी है। निर्वाचन आयोग स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय और मितव्ययी निर्वाचन शांति, स्थिरता, समृद्धि और सुशासन के नारे के साथ परसों फागुन 7 गते चौथा निर्वाचन दिवस मनाएगा। निर्वाचन दिवस के मौके पर देश के 77 जिलों के निर्वाचन कार्यालयों में इसी फागुन 1 से 8 गते तक मतदाता नामावली पंजीकरण सप्ताह के रूप में मतदाता दर्ता पंजीकरण कार्यक्रम संचालन किया जाएगा। इस बात का जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली 3 दिन के औपचारिक भ्रमण पर बांग्लादेश के लिए रवाना हुए हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ एके अब्दुल मोमेन का निमंत्रण पर मंत्री ग्यावाली ने बांग्लादेश के लिए प्रस्थान किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता किए जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के क्वेटा में एक भीषण बम धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 35 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह एक आत्मघाती धमाका था जिसे एक पुलिस वाहन को निशाना बनाकर अंजाम दिया गया। धमाके में 2 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्यून के अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह धमाका बलूचिस्तान की राजधानी के सेरिया इकबाल इलाके में हुआ जिसे सुरक्षा बलों ने क्षेत्र के घेरेबंदी कर ली है। क्वेटा बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान और ईरान से भी लगती है। अस्पताल के एक अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स ने बताया है कि घटनास्थल से अब तक 7 शवों को लाया गया है और समाचार पत्र डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक यह धमाका क्वेटा प्रेस क्लब के नजदीक हुआ। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। काठमांडू में बिजली वितरण प्रणाली को भूमिगत करने के कार्य का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया शुभारंभ। आगामी 2 वर्षों के अंदर में बिजली पहुंचाने की प्रधानमंत्री ने जताई प्रतिबद्धता। डॉ शिवमया तुम्बाहाम्फे को कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री में की गई नियुक्ति। आज ही किया पदभार ग्रहण। आज रात 12 बजे से लागू होगी नए पेट्रोल डीजल और मिट्टी के तेल के नए मूल्य प्रति लीटर 2 रूपये घटाने का नेपाल आयल निगम ने लिया निर्णय और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम धमाका 7 लोगों की हुई मौत 35 से ज्यादा हुए घायल। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।